नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में भ्रष्टाचार और सरकार के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरुद्ध युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत हो गई है और 340 से अधिक लोग घायल हुए हैं। काठमांडू के बानेश्वर में हिंसक प्रदर्शन पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। घायलों में प्रदर्शनकारी, सुरक्षाकर्मी और पत्रकार शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों को सभी घायलों का निशुल्क उपचार करने का निर्देश दिया है। इस बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये प्रदर्शन 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब सहित गैर पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू करने के बाद शुरू हुआ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम काठमांडू में अपने आवास पर मंत्री परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की। देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। मतगणना भी कल ही होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को ज्ञान और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर तथा निर्यात में उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है।
पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में काफी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की कार्यशाला के समापन सत्र को आज संबोधित किया। संसद भवन के बालयोगी सभागार में हुई 2 दिन की कार्यशाला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि कार्यशाला जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से सीखने और लोगों की बेहतर सेवा करने पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यशाला के सभी प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उपस्थित थे। प्रधानमंत्री बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कल पंजाब का दौरा करेंगे। वे पीड़ितों के लिए अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में संशोधित मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पारिश्रमिक में वृद्धि करने की घोषणा की है। आंगनवाड़ी सेविकाओं का पारिश्रमिक बढ़ाकर 7,000 से 9,000 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का 4,000 से बढ़ाकर 4,500 कर दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उद्योगों को स्वदेशी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे न केवल देश के विकास में मदद मिलेगी बल्कि वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों में उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में एकजुट है। श्री गोयल ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती और सरलीकरण से प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू मांग को बढ़ावा दिया है।
जीएसटी में जो इतने बड़े बदलाव किए गए, रेट कट्स किए गए, ये हम पास ऑन करें उपभोक्ताओं को और सुनिश्चित करें कि इसका लाभ उपभोक्ता को मिले, डिमांड बढ़े, उससे हमारा उद्योग और व्यापार भी बढ़ेगा, स्वदेशी वस्तुओं के लिए आकर्षण बढ़ेगा और पूरे देश में सुख समृद्धि बढ़ेगी।
भारत और इसराइल ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोटरिच ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों को बढ़ाना और इसराइली निर्यातकों के लिए वित्तीय प्रोटोकॉल तलाशना है। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत सुपर 4 चरण में पहुंच गया है। चीन में नवनीत कौर और मुमताज खान की हैट्रिक की बदौलत आज भारत ने सिंगापुर को 12-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।